एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक वाकई बहुत दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, एडीएस ग्लॉट जूनियर की अफ्रीकन अमेरिकन रिलीजन।
हाँ, ये किताब हमें अमेरिका में जो अश्वेत समुदाय है उनके धार्मिक अनुभवों की काफी जटिल और अक्सर मतलब ठीक से न समझी जाने वाली दुनिया में ले जाती है।
बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये विषय सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। ये हमें बहुत कुछ सिखाता है कि कैसे कोई समुदाय अपनी पहचान, अपनी आध्यात्मिकता
और न्याय की लड़ाई,
हाँ और न्याय की लड़ाई को, वो भी नस्लवाद और इतनी मुश्किलों के बीच कैसे जिंदा रखता है।
ये सिर्फ बीती हुई बात नहीं है।
सही कहा, ये कहानी तो आज भी लिखी जा रही है।
हाँ,
मतलब ये कोई म्यूजियम की चीज नहीं है।
नहीं है ना?
हाँ, और जैसा हम देखेंगे, ये कहानी सिर्फ चर्च या मस्जिदों में नहीं मिलती, ये फैली हुई है संघर्ष में, संगीत में, बहसों में, रोज की जिंदगी में।
तो चलिए शुरुआत करते हैं लेखक से। एडीएस ग्लॉट जूनियर, ये नाम काफी बड़ा है एकेडमिक दुनिया में।
हाँ बिल्कुल, वो अमेरिका के माने हुए बुद्धिजीवियों में से हैं, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अफ्रीकी अमेरिकी स्टडीज डिपार्टमेंट के हेड हैं।
और उनकी खासियत क्या है? मतलब वो सिर्फ इतिहासकार तो नहीं है?
नहीं नहीं वही तो बात है, वो एक दार्शनिक की तरह भी सोचते हैं, खासकर जो अमेरिकी प्रैग्मेटिज्म है उसके नज़रिए से देखते हैं। तो उनके काम में आपको इतिहास मिलेगा, दर्शन मिलेगा और समाज पर तीखी टिप्पणी भी मिलेगी।
अच्छा,
और वो इस परंपरा को अंदर से भी जानते हैं और बाहर से एक आलोचक की नज़र से भी देखते हैं।
मतलब सिर्फ पुरानी बातें दोहरा नहीं रहे बल्कि ये दिखा रहे हैं कि ये परंपरा आज भी कैसे अमेरिकी समाज को, वहां की राजनीति को, नस्ल जैसे मुद्दों को मतलब बना रही है, शक्ल दे रही है।
बिल्कुल, उनकी बात में वजन इसीलिए है क्योंकि वो इतिहास को आज के जो संकट हैं उनसे जोड़कर देखते हैं।
सही। तो अब आते हैं किताब पर। इसका असल मकसद क्या है? आपने कहा ये कोई मोटी ताजी एनसाइक्लोपीडिया नहीं है।
नहीं बिल्कुल नहीं, ग्लॉट खुद कहते हैं कि ये एक छोटी तर्क पर आधारित गाइड है। कोशिश ये है कि अफ्रीकी अमेरिकी धर्म पर जो पूरी बातचीत होती है ना, उसको एक नया नजरिया, एक नया फ्रेम दिया जाए।
अब वो नया फ्रेम क्या है?
यही शायद सबसे अहम बात है इस किताब की।
हाँ, मेरे ख्याल से तो यही है।
ग्लॉट कहते हैं कि हमें वो जो एक आम सोच है ना, द ब्लैक चर्च, कि बस एक ही तरह का एकजुट चर्च है अश्वेत समुदाय का,
हाँ हाँ सुना है।
उस सोच को छोड़ना होगा। ये तस्वीर बहुत अधूरी है, बल्कि गलत भी है।
अच्छा, तो फिर क्या है?
उनका जो मुख्य तर्क है वो ये है कि अफ्रीकी अमेरिकी धर्म को हमें एक विवादात्मक परंपरा की तरह देखना चाहिए, डिस्कर्सिव ट्रेडिशन।
विवादात्मक परंपरा, इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब सोचिए, एक लगातार चलने वाली बहस, पीढ़ी दर पीढ़ी। किस बारे में? कि अमेरिका में अश्वेत होले का मतलब क्या है, ईश्वर कौन है, दुख से कैसे निपटें, आजादी क्या है।
तो ये एक तरह की बातचीत है जो रुकी नहीं है कभी।
बिल्कुल, और इसमें सिर्फ पादरी या मौलवी नहीं है, इसमें लेखक, कलाकार, संगीतकार, एक्टिविस्ट, आम लोग सब शामिल हैं। ये सबकी मिलीजुली बहस है।
ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये कोई शांत तयशुदा विश्वासों का सेट नहीं है?
हाँ, बल्कि एक जिंदा, हिलती डुलती, कभी कभी आपस में लड़ती हुई परंपरा है।
सही। और ये गुलामी के दौर की जो गुप्त प्रार्थना सभाएं होती थी वहां से शुरू होकर आज के हिप हॉप म्यूजिक तक फैली हुई है।
तो ये जो आम धारणा है कि सब एक जैसे हैं, उसको तोड़ती है ये किताब।
बिल्कुल, अति सरलीकरण से बचाती है और हमें विविधता दिखाती है। किताब हमें इसी परंपरा की यात्रा पर ले जाती है। गुलामी के दौर से शुरू होती है कहानी, कैसे अफ्रीकी और ईसाई मान्यताएं टकराईं और मिलीं।
अच्छा,
फिर आज़ादी के बाद कैसे स्वतंत्र ब्लैक चर्च बने, फिर शहरों की तरफ जो बड़ा पलायन हुआ, ग्रेट माइग्रेशन, उस वक्त कैसे नए नए धार्मिक प्रयोग हुए। फिर आता है नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसमें चर्च की भूमिका तो थी लेकिन वो भी मतलब सीधी साधी नहीं थी, जटिल थी।
जटिल कैसे?
उस पर आएंगे। फिर ब्लैक पावर आंदोलन, नेशन ऑफ इस्लाम की चुनौतियां, और फिर आज का दौर जहां मेगा चर्च हैं, कुछ लोग धर्म से दूर भी हो रहे हैं, और हाँ, ब्लूज संगीत भी एक अहम आध्यात्मिक आवाज की तरह सामने आता है।
ब्लूज संगीत, ये तो वाकई अलग बात है। चलिए कुछ हिस्सों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। आपने कहा किताब की शुरुआत में ही ग्लॉड इस विवादात्मक परंपरा वाले विचार पर जोर देते हैं, इसे थोड़ा और समझाएंगे?
हाँ, देखिए, इसका मतलब है कि ये परंपरा कुछ साझा सवालों, कुछ प्रतीकों जैसे बाइबल हो गई या वो आध्यात्मिक गीत जिन्हें स्पिरिचुअल्स कहते हैं, इनके इर्द गिर्द बनी है, लेकिन इन पर सबकी राय एक नहीं है।
मतलब सवाल वही हैं पर जवाब अलग अलग।
बिल्कुल, लोग लगातार बहस करते हैं कि भाई इनका मतलब क्या है, ईश्वर आखिर है कौन, दुख से कैसे जूझें, आजादी मिलेगी कैसे। ये बहस ही इस परंपरा की जान है, उसकी जिंदगी है।
तो फिर इसमें ईसाई, मुस्लिम, मानवतावादी, राष्ट्रवादी, क्या ब्लूज गाने वाले भी, ये सब एक ही बड़ी बातचीत का हिस्सा माने जा सकते हैं क्योंकि वो सब इन्हीं बुनियादी सवालों से जूझ रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, यही तो ग्लॉट्स का नजरिया है। अब वो हमें ले चलते हैं इसकी जड़ों तक, गुलामी का वो भयानक दौर। नई दुनिया मैट्रिक्स कहते हैं वो ऐसे। यहाँ पर जो धर्म बदला गया वो सिर्फ ऊपर से थोपा नहीं गया था।
अच्छा,
जो गुलाम बनाए गए अफ्रीकी लोग थे, उन्होंने अपनी पुरानी परंपराओं जैसे योरुबा, कोंगो वगैरह की मान्यताएं थीं, उनको ईसाई धर्म के साथ मिला दिया, एक तरह का क्रिएटिव मिश्रण बनाया। इसे अकेडमिक भाषा में क्रियोलाइजेशन कहते हैं।
और यहीं से वो अदृश्य संस्था वाली बात आती है ना, इनविजिबल इंस्टीट्यूशन।
हाँ वही, वो गुप्त धार्मिक सभाएं जहां गुलाम लोग अपनी तरह से ईश्वर को याद करते थे, आजादी के गीत गाते थे
और बाइबल को अपनी मुक्ति की कहानी की तरह पढ़ते थे।
बिल्कुल, ये सिर्फ पूजा नहीं थी, ये प्रतिरोध भी था, एक तरह से अपनी पहचान बचाने की कोशिश।
सही कहा। और फिर गुलामी खत्म होने के बाद ये अदृश्य संस्था दृश्य बन गई।
हाँ, आजाद ब्लैक चर्च बनने लगे, जैसे रिचर्ड एलन ने एएमई चर्च बनाया। ये सिर्फ पूजा की जगहें नहीं थीं, ये समुदाय के केंद्र बन गए। स्कूल भी वहीं, मीटिंग हॉल भी वहीं, राजनीतिक मंच भी वहीं।
ये तो सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की आजादी का ऐलान था।
बिल्कुल, लेकिन ग्लॉड यहाँ एक और पेचीदा बात लाते हैं, सम्मान की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी।
सम्मान की राजनीति, ये क्या है?
मतलब जैसे जैसे ये चर्च और संस्थाएं बढ़ीं, उनमें एक सोच पनपी कि हमें श्वेत समाज को ये दिखाना होगा कि हम अच्छे हैं, सभ्य हैं, अनुशासित हैं, ताकि हमें बराबरी का हक मिले। ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, जिंदा रहने की रणनीति थी।
लेकिन ग्लॉड शायद ये मानते हैं कि इस कोशिश में कहीं ना कहीं वो जो क्रांतिकारी आवाज थी, वो जो सीधे सीधे न्याय की मांग थी, वो थोड़ी दब गई।
हाँ, यही उनका तर्क है। वो कहते हैं कि ये शायद उस वक्त जरूरी था, पर इसने परंपरा की जो एक रेडिकल धार थी उसको कभी कभी कुंद भी किया।
और ये तनाव, मतलब न्याय की वो पैगंबरी पुकार, प्रोफेसी, और संस्था चलाने की जो जरूरतें हैं, प्रैग्मेटिज्म, ये बार बार आता है किताब में।
हाँ बिल्कुल, ये इस परंपरा का एक केंद्रीय द्वंद्व है, आप इसे पूरी कहानी में महसूस करेंगे।
फिर आता है 20वीं सदी का वो बड़ा बदलाव, ग्रेट माइग्रेशन। लाखों लोग दक्षिण के गांवों से उत्तर के शहरों में गए, इसका धर्म पर क्या असर पड़ा?
जबरदस्त असर। शहरों में जो पहले से बसे हुए स्थापित चर्च थे, वो अक्सर इन नए आए लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर पाए। उनकी उम्मीदें, उनकी परेशानियां अलग थीं।
तो फिर क्या हुआ?
तो नए तरह के धार्मिक आंदोलनों का जैसे विस्फोट हो गए। छोटे छोटे दुकानों जैसे चर्च खुले, स्टोर फ्रंट चर्च। ये ज्यादा जोशीले थे, ज्यादा व्यक्तिगत जुड़ाव वाले थे। होलीनेस और पेंटेकोस्टल आंदोलन उभरे, जिनमें भावनाओं पर, दैवीय अनुभवों पर, हीलिंग पर बहुत जोर था।
और शायद ईसाई धर्म से हटकर भी कुछ आंदोलन आए इस दौर में।
बिल्कुल, जैसे नोबल रूअली का मूरिश साइंस टेम्पल था, या फादर डिवाइन का आंदोलन। ये सब दिखाता है कि ये परंपरा कितनी लचीली है, कैसे बदलते हालात में नए जवाब, नए रूप खोज लेती है। ये रुकती नहीं है, बहस करती रहती है, बदलती रहती है।
अब आते हैं उस दौर पर जिससे शायद ये परंपरा सबसे ज्यादा पहचानी जाती है, नागरिक अधिकार आंदोलन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, चर्च की भूमिका, ये तो हम सब जानते हैं।
हाँ, संगठन देना, लोगों को टिकाए रखना, किंग की वो भाषा, सब में चर्च की भूमिका अहम थी, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन आपने कहा था कि ग्लॉड इसे जटिल बनाते हैं।
हाँ, वो हमें याद दिलाते हैं कि यहाँ भी सब एकमत नहीं थे। आंदोलन कैसे चलाया जाए, लक्ष्य क्या हो, इन बातों पर अश्वेत धार्मिक समुदाय के अंदर ही गहरे मतभेद थे।
अच्छा,
जैसे किंग का टकराव रेवरेंड जोसेफ एच जैक्सन से हुआ। जैक्सन नेशनल बैप्टिस्ट कन्वेंशन के बहुत बड़े और रूढ़िवादी नेता थे। वो किंग के सविनय अवज्ञा को खतरनाक मानते थे। वो कहते थे, धीरे चलो, कानून के दायरे में रहो।
तो फिर से वही बात सामने आ गई, द ब्लैक चर्च कोई एक आवाज नहीं थी, ये खुद बहस का मैदान था।
बिल्कुल, वो विवादात्मक परंपरा वाला विचार यहाँ भी एकदम फिट बैठता है। और फिर 60 के दशक के अंत में आया ब्लैक पावर आंदोलन।
हाँ, मैल्कम एक्स।
हाँ, मैल्कम एक्स और नेशन ऑफ इस्लाम ने तो ईसाई धर्म को सीधे सीधे चुनौती दे दी। कहा कि ये गोरे आदमी का धर्म है जिसने अश्वेतों को गुलामी सहना सिखाया है। ये बहुत बड़ी चुनौती थी।
इसका जवाब कैसे दिया गया फिर?
यहीं से जेम्स कोन जैसे धर्मशास्त्रियों ने ब्लैक थियोलॉजी यानी अश्वेत धर्मशास्त्र को गढ़ा।
अश्वेत धर्मशास्त्र?
हाँ,
उनका कहना था कि ईश्वर हमेशा उत्पीड़ितों, दबे कुचलों के साथ खड़ा होता है। इसलिए यीशु भी असल में ब्लैक हैं, क्योंकि वो हाशिए पर खड़े लोगों के प्रतीक हैं। ये ईसाई धर्म को अश्वेत मुक्ति के संघर्ष से जोड़ने की एक बहुत रेडिकल कोशिश थी।
ये तो वाकई क्रांतिकारी विचार है। और इसी दौर में आप कह रहे थे ग्लॉड ब्लूज संगीत को भी ले आते हैं। ये थोड़ा मतलब अनपेक्षित सा लगता है, संगीत और धर्मशास्त्र।
हाँ, और ये ग्लॉड का एक बहुत ही मौलिक, बहुत जरूरी तर्क है। वो कहते हैं कि ब्लूज सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये जिंदगी के दुख, दर्द, नस्लवाद, दिल टूटने, इन सबका सामना करने का एक तरीका है।
तो ये एक तरह का आध्यात्मिक जवाब है।
बिल्कुल, वो कहते हैं ये चर्च के उपदेश का साथी है, एक तरह का थियोलॉजिकल काउंटरपॉइंट जो दुनिया की मुश्किलों पर एक गहरी, कभी उदास, कभी विद्रोही, लेकिन हमेशा जमीनी टिप्पणी करता है। ब्लूज में भी आध्यात्मिकता है, बस उसका रूप अलग है।
यानी आध्यात्मिकता सिर्फ चर्च या मस्जिद की दीवारों के अंदर नहीं मिलती, ये आप कह रहे हैं। ग्लॉड के मुताबिक बिल्कुल नहीं। और वो आज के दौर को पोस्ट सोल एरा कहते हैं, मतलब नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद का जो बिखरा हुआ सा नजारा है।
इसमें क्या दिखता है?
एक तरफ तो टीडी जैक्स जैसे नेताओं वाले बड़े बड़े मेगा चर्च हैं, जहां अक्सर व्यक्तिगत सफलता, पैसे, समृद्धि पर ज्यादा जोर होता है, ग्लॉड इसकी आलोचना करते हैं।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ जो पुराने ऐतिहासिक ब्लैक चर्च हैं, उनका असर कम हो रहा है और बहुत से युवा खासकर अब किसी भी संगठित धर्म से खुद को जोड़ नहीं पाते, जिन्हें नंस कहते हैं।
और लैंगिक समानता और LGBTQ+ अधिकारों जैसे मुद्दे भी हैं जिन पर लगातार बहस चल रही है ना?
हाँ बिल्कुल, अश्वेत महिलाएं और LGBTQ+ समुदाय चर्च और परंपरा के भीतर अपनी पूरी पहचान और निदर्थ की जगह मांग रहे हैं।
तो किताब एक तरह से एक खुले सवाल के साथ खत्म होती है कि इस बदलती बहस करती परंपरा का भविष्य क्या होगा। ये तो वाकई बहुत गहरी और कई परतों वाली कहानी है। अगर हमें इसमें से कुछ मुख्य बातें, कुछ टेक अवेज निकालने हों तो वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात तो यही है, अफ्रीकी अमेरिकी धर्म एक विवादात्मक परंपरा है, कोई एक मोनोलिथ, कोई एक चीज नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें हमेशा अलग अलग, यहां तक कि एक दूसरे के खिलाफ आवाजें भी रही हैं और रहेंगी।
हाँ, ये जरूरी है। और दूसरी बात जो मुझे समझ आई वो है न्याय की पुकार, प्रोफेसी, और जो जमीनी हकीकत है, संस्था चलाने की जरूरतें, प्रैग्मेटिज्म, इनके बीच का वो लगातार चलने वाला तनाव, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि शायद यही चीज इस परंपरा को जिंदा रखे हुए है।
बिल्कुल, आदर्श और यथार्थ के बीच की वो कश्मकश। तीसरा, अंदरूनी विविधता को स्वीकार करना, कोई एक ब्लैक चर्च नहीं, कोई एक ब्लैक वोट नहीं, सोच में, आस्था में, राजनीति में बहुत भिन्नता है, हमें इस जटिलता का सम्मान करना चाहिए।
और चौथा जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, ब्लूज संगीत एक गंभीर आध्यात्मिक विकल्प के तौर पर, ये हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता के रास्ते बहुत अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो परंपरागत धर्म के दायरे में ही हो।
हाँ, और आखिर में शायद सबसे अहम बात, ये पूरी परंपरा मुश्किल हालात और नाइंसाफी के बीच लगातार मायने गढ़ने की, अर्थ बनाने की एक जबरदस्त मानवीय कोशिश है। नस्लवाद के जहर के बावजूद इंसानियत पर जोर देना, दुख में भी उम्मीद खोजना और एक बेहतर दुनिया का सपना देखना, ये इसकी आत्मा है।
ये बातें सोचते हुए मुझे अपने देश की भी याद आती है। भारत में भी हम देखते हैं ना कि किसी एक धर्म के अंदर ही कितने अलग अलग पंथ, कितने अलग सोच होती है।
हाँ बिल्कुल,
और समाज को बदलने के तरीकों पर भी बहस होती है, कोई क्रांति की बात करता है, कोई धीरे धीरे सुधार की। तो ये समझना कि ये बहसें, ये तनाव समुदाय की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबूत हैं, ये ग्लॉड की किताब से एक बड़ा सबक है।
सही कहा। और वो ब्लूज वाली बात भी, हमारे यहाँ भी तो कितना लोक संगीत है, लोक कथाएं हैं, जो आम लोगों के दुख दर्द, उनकी उम्मीदों, उनकी आध्यात्मिकता को आवाज देती हैं, शायद कभी कभी मंदिरों मस्जिदों से भी ज्यादा गहराई से।
ग्लॉट की किताब में कई ऐसी पंक्तियां, ऐसे विचार हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे उनका ये कहना कि धर्म कोई स्थिर चीज नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली बहस है कि इंसान होने का और अमेरिका में अश्वेत होने का मतलब क्या है। ये धर्म को एक क्रिया की तरह दिखाता है ना, सिर्फ संज्ञा नहीं।
बिल्कुल। और ब्लूज पर उनकी बात कि ये दर्द और नाइंसाफी को सीधे देखता है और फिर भी जीने का एक तरीका, एक उम्मीद करता है। ये पवित्र और सांसारिक के बीच की दीवार को गिरा देता है। ये सच में थियोलॉजिकल संगीत है।
किंग और जैक्सन का वो संघर्ष भी याद रखने लायक है। ये दिखाता है कि बड़े आंदोलनों में भी नेतृत्व को लेकर, दिशा को लेकर अंदरूनी बहसें कितनी जरूरी और स्वाभाविक होती हैं।
और वो सम्मान की राजनीति वाली बात भी सोचने वाली है। कैसे बाहरी दबाव कभी कभी हमें खुद को एक सीमित दायरे में बांधने पर मजबूर कर देता है, और कैसे इससे वो लोग हाशिए पर जा सकते हैं जो इस सभ्य माने जाने वाले खांचे में फिट नहीं होते। ये सब बातें हमें सिर्फ अफ्रीकी अमेरिकी अनुभव नहीं, बल्कि शायद इंसान होने की बड़ी पहेली के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती हैं।
तो इन सब बातों का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, हम इससे क्या सीख सकते हैं?
देखिए, पहली बात तो ये कि जब हम आज दुनिया में या अपने ही समाज में किसी समुदाय के अंदर अलग अलग मत या बहसें देखें, तो उसे फौरन फूट या कमजोरी न समझें।
हाँ, ये होता है अक्सर।
हाँ, हो सकता है ये ग्लॉट की बताई विवादात्मक परंपरा का ही एक रूप हो, जो दिखा रहा है कि समुदाय जिंदा है, सोच विचार कर रहा है।
दूसरा, शायद हमें किसी भी समूह के बारे में बनी बनाई धारणाओं से, स्टीरियोटाइप से सावधान रहना चाहिए। जैसे कोई एक दलित वोट या एक मुस्लिम सोच नहीं होती,
वैसे ही कोई एक ब्लैक राय नहीं होती। हर समुदाय अंदर से बहुत विविध होता है, हमें इस जटिलता का सम्मान करना सीखना होगा।
तीसरा, शायद आध्यात्मिकता को थोड़ा और खुले नजरिए से देखना। किसी को मंदिर मस्जिद जाने में सुकून मिलता होगा, किसी को संगीत में, किसी को प्रकृति में,
किसी को दूसरों की मदद करने में। अर्थ और सुकून पाने के कई रास्ते हो सकते हैं।
और चौथा, शायद सामाजिक बदलाव के लिए जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक सबक है। किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ने के लिए बड़े सपनों की भी जरूरत होती है, और जमीनी संगठन की भी।
हाँ, वो भविष्यवाणी और व्यावहारिकता वाला तनाव।
बिल्कुल। और अंदरूनी बहसें अगर वो स्वस्थ हों तो आंदोलन को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। ये बातें हमारे अपने समाज को देखने का नजरिया बदल सकती हैं ना?
बिल्कुल। मेरे लिए तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख यही है कि अफ्रीकी अमेरिकी धर्म की जो जटिलता है, उसके अंदर के जो विरोधाभास है और उसकी जो लगातार नई चीजें रचने की क्षमता है, उसको समझना और अपनाना कितना जरूरी है। ये आस्था की कोई सीधी साधी कहानी नहीं है।
हाँ, ये मुश्किलों के बीच इंसानी जज्बे, बौद्धिक संघर्ष और आध्यात्मिक खोज की एक शानदार दास्तान है।
सही कहा।
और मेरे लिए शायद सबसे चौंकाने वाली बात ब्लूज को एक धार्मिक परंपरा की तरह देखना थी, और ये समझना कि कैसे अंदरूनी बहसें असल में ताकत का स्रोत हो सकती हैं, कमजोरी का नहीं। ये वाकई अमेरिका की एक अहम बौद्धिक और नैतिक विरासत है, जिससे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।